सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे सभी नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आप सबको एक मेल पढ़कर सुनाना चाह रहा हूं। दरअसल इस मेल का संबंध हमारी जो 15 दिन की क्लासेस होती हैं उससे है, और मैंने 15 दिन की क्लासेस में क्या कराया जाता है, क्या किया जाता है, इसके बारे में कुछ जानकारियां दी थी। लेकिन फिर भी आप सबकी जिज्ञासा बनी ही रहती है, तो मुझे लगा कि आज एक ऐसे मेल को मैं पढ़कर आप सबके सामने रखूं जिससे हो सकता है कि 15 दिन की क्लासेस के बारे में आपकी जो धारणा है वो और स्पष्ट हो सके। तो दोस्तों, यही सोचकर मैं एक मेल आपको पढ़कर सुना रहा हूं। यह मेल लिखा है हमारे 13th बैच की स्टूडेंट नांदी रावल ने, जो अहमदाबाद गुजरात से हैं। मैं उनके शब्दों को बिल्कुल ज्यों का त्यों आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रणाम गुरुजी, आज हमारी बैच ने आपके साथ एक साल पूर्ण किया, जिसका हमें गर्व है, साथ ही दुख भी है कि आपके साथ तथा बैच के साथियों के साथ बिताया समय कुछ जल्द ही समाप्त हो गया। वो रोज सुबह साइंस सेंटर पर ब्रेकफास्ट, लंच करना और आपके लेक्चर लाइव महसूस करना बहुत याद आते हैं। आज भी जब किसी बैच मेट के साथ वो दिनों को याद करते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। वो पल ही कुछ अलग थे, जैसा आज तक कभी नहीं जिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, नांदी रावल, अहमदाबाद, गुजरात। दोस्तों, मैंने ये मेल जानबूझ करके आप लोगों के सामने रखा है। इस तरह के और भी मेल आते रहते हैं। यह हम लोगों का सौभाग्य है कि स्टूडेंट 15 दिन के क्लासेस को इस रूप में लेते हैं। इस बैच के साथ चूंकि हमारा साल भर का वक्त पूरा हुआ है और उन्होंने बहुत अच्छा मेल भेजा, तो मुझे ऐसा लगा कि इसी के माध्यम से मैं नांदी रावल के शब्दों को उनके जो बैच मेट्स रहे हैं उन तक भी पहुंचा दूं, और आप में से वे जो 15 दिन के लिए प्लान कर रहे हैं उनके दिमाग में भी शायद इसकी वजह से थोड़ी सी और स्पष्टता आ सके। यही सोचकर मैंने ये मेल आपके सामने पढ़कर सुनाया है। तो नांदी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोस्तों, यहां मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे जब 15 दिन का बैच खत्म हो जाता है तो हर सप्ताह हम अपने स्टूडेंट को एक स्पेशल ऑडियो गाइडेंस के रूप में ऑडियो प्रोवाइड करते हैं, और इस तरह के 50 ऑडियो उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये जो 50 ऑडियो हैं लगभग एक साल में पूरे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि नांदी रावल ने जो अभी ये जो मेल लिखा है शायद इसी अवसर पर लिखा है होगा कि वो 50 जो ऑडियो हैं वो पूरे हो गए होंगे। खैर, तो दोस्तों अब मैं सीधे सीधे आता हूं आज मुख्य विषय पर, वो है खुशी का सूचकांक। और यदि कुछ वक्त बचा तो डेफिनेटली फिर मैं दूसरी खबरों पर आऊंगा। एक बात मैं जो स्पष्ट करना चाहूंगा वो ये है कि शुरू में अखबार में जो मुझे आंकड़ा मिला था वो हैप्पी इंडेक्स का 136वें स्थान का आंकड़ा मिला था। इसे आप थोड़ा सा करेक्ट कर लें, उनकी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक थी, वो 126th पोजीशन रही है हमारी, 126th। लेकिन अगर 126वीं पोजीशन भी हमारी है तो ये कोई बहुत ही प्रसन्नता की बात नहीं है। लेकिन यहां मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूं वो आज ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप भारत को किस आधार पर सूचकांक में इतना नीचे रख सकते हैं? क्या सच में जो डेवलप्ड कंट्री हैं या कह लीजिए जो धनी राष्ट्र हैं वो किसी भी चीज का निर्धारण करने के लिए जो मानक तैयार करते हैं वे हमें ज्यों के त्यों स्वीकार कर लेने चाहिए? वो मानक तैयार करते हैं जीडीपी को लेकर के, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेकर के, लेवल ऑफ लाइफ को लेकर के, क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर के। ये सारे की सारी जो बातें हैं, तथ्य हैं, ये भौतिक जीवन से संबंधित हैं। और आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत ने भौतिक जीवन को कभी इतनी अहमियत नहीं दी है। मैं भारतीय दर्शन की बात कर रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि हमारा भारतीय दर्शन अगर भौतिक जीवन के स्थान पर आंतरिक जीवन को बहुत ज्यादा अहमियत देता है तो भौतिकता को पूरी तरह से अस्वीकार करता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो वेस्ट की तरह बिल्कुल भौतिक जीवन को ही जीवन का आधार मानकर चले। जरा फॉरेन राइटर्स की किताबें पढ़ेंगे जो खासकर सेल्फ हेल्प बुक के रूप में बहुत सारी अवेलेबल हैं, अब तो हिंदी में भी बहुतों का ट्रांसलेशन हो गया है, तो आप पाएंगे कि उनका जो केंद्र होता है कि कैसे अच्छा जीवन जिएंगे, कैसे जीवन में सफलता हासिल करेंगे, कैसे जीवन में खुशी प्राप्त करेंगे, आपके संबंध कैसे दूसरों से बेहतर हो सकते हैं, कैसे आप चिंता से मुक्त हो सकेंगे, इन सब के केंद्र में केवल यही होता है कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। कुछ देर इस पर बात होती है और इसके बाद फिर धन कमाने पर बात होने लगती है, जबकि हमारे यहां ऐसा नहीं है। जो हमारा दर्शन रहा है वो तो सीधे सीधे कहता है कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, रथ धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान। चाहे इतने तरह के धन क्यों ना आ जाए, हमारे पास रत्नों की खदान क्यों ना हो, लेकिन हम सुखी नहीं हो सकते, हम खुश नहीं रह सकते तब तक जब तक कि संतोष का धन हमारे पास नहीं आ जाता। तो जो संस्कृति, जो दर्शन संतोष को इतना ज्यादा महत्व देती हो, जो दर्शन जीवन में त्याग की बात करता हो, तो आप खुद सोच करके देखिए कि फिर वह समाज इन भौतिकवादी मानकों पर खरा कैसे उतर सकता है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है, लेकिन उसकी स्थिति हमसे काफी बेहतर है। यह स्थिति हम बांग्लादेश में देखते हैं, यहां तक कि आप श्रीलंका में भी देखते हैं, नेपाल की भी देखते हैं। तो क्या सच में हम इनसे बदतर जीवन जी रहे हैं? दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके मस्तिष्क में विचार करने के लिए कुछ एक कुलबुलाहट सी पैदा हो सके और तथ्य उत्पन्न हो सके कि कैसे किसी एक घटना को यथार्थ रूप में और अलग अलग कोणों से देखा जा सकता है। हमारे सामने ये बात नहीं आती है, जो तीन देश मैंने आपको बताए थे, जो जिनमें फिनलैंड, डेनमार्क, आइलैंड और भी जो दूसरे राष्ट्रों के फर्स्ट 20 को ही अगर आप ले लें, तो इनमें बहुत से देश ऐसे हैं, खासकर जो फर्स्ट 3 कंट्रीज हैं, जो अपने यहां के ट्रेडिशन को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। ये बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल कंट्रीज हैं, वहां के जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, आपसी संबंध हैं, वो बहुत निकट के हैं। तो वहां की जो खुशी है उसका आधार केवल जीडीपी ही नहीं है, बल्कि कुछ दूसरी चीजें भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि इन दूसरी चीजों को मानकों में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, वहां तो वे भी हैं, तो सोना में सुहागा है और बहुत अच्छी पोजिशन में वो पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे यहां की भी स्थिति इतनी खराब नहीं है कि आप उसे इतना नीचे ढकेल सकें। तो दोस्तों, इसके आधार पर आप एक बात कह सकते हैं, वो ये कि अब वह समय आ गया है जब पूरे के पूरे विकासशील देशों को ये जो पश्चिमी मानक हैं, इन पश्चिमी मानकों को नकार करके और यथार्थवादी मानक स्थापित करने चाहिए, जो हमारे संपूर्ण जीवन का प्रतिनिधित्व करते हों, जीवन के केवल भौतिक या आर्थिक पक्ष का ही नहीं। भूटान ने ऐसा किया है, भूटान ने एक अलग से इंडेक्स बनाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि उसकी इतनी बात नहीं होती है। मैं लगभग दुनिया के 40 देशों में गया हूं और वेस्ट के तो बहुत से देशों में जाने का मौका मिला है, और अमेरिका में तो 2-3 महीने हम लोग रहे भी। वहां के जीवन के बारे में अखबारों में देखिए कि बीच बीच में आपको पढ़ने को मिलते हैं कि ऑलमोस्ट 50% लोग अकेले रहते हैं, डिप्रेशन की बहुत ज्यादा समस्या वहां खड़ी हो गई है, मोटापा की बीमारी ने वहां एक तरह से राष्ट्रीय रोग का रूप ले लिया है, किस तरह के अपराध लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अगर वहां इस तरह की स्थिति है तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट आदमी के हैप्पीनेस पर नहीं पड़ता है? पड़ता है। तो आप उन मानकों को क्यों अस्वीकार करते हैं? उसको आप लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ करके देख लेते हैं, या अगर देखते भी हैं तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की आपकी डेफिनेशन क्या है? वो फिर व्यापक होनी चाहिए कि भाई आदमी कितने निश्चिंतता के साथ समाज में रह पाता है, उसकी कितनी निश्चिंतता है, वो एक दूसरों पर कितना ज्यादा विश्वास कर पाता है, एक दूसरे से जुड़ करके वो कितना जीवन जी पाता है, एक दूसरे का कितना सहयोग कर पाता है, जो हमारे भारतीय ग्रामीण जीवन की एक बहुत बड़ी विशेषता है। और अब तो मैं ये भी देख रहा हूं कि हमारे जो महानगर हैं, उन महानगरों में जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जो कॉलोनियां बनी हुई हैं, उनमें भी इस तरह के सहयोग की भावना बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि वहां हर व्यक्ति अकेला है और वो समझ गया है कि इन्हें अकेले का जीवन तो कोई जीवन नहीं होता है, तो आपस में बहुत ज्यादा सहयोग करने लगे हैं। ये बात आपको वेस्ट में दिखाई नहीं देगी। तो हमें अब नए मानकों की जरूरत है। एक बात मैं और यहां आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कि जब हम खुशी कहते हैं और जब हम सुख कहते हैं तो दोनों में फर्क है। सुख तो बाहरी चीज है, जैसे मान लीजिए कि मुझे पहले नदी पर जाना पड़ता था, तालाब जाना पड़ता था सिर पर घड़ा रख करके। अब मैं चूंकि पुरुष हूं तो घड़ा रख करके नहीं जाऊंगा, लेकिन आप अपने ढंग से उसे सुधार लें। और अपने घर के लिए पानी लाना पड़ता था या कुएं से पानी खींचना पड़ता था, अब घर में मेरे नल आ गया है या हैंडपंप लग गया है, तो ये खुशी है या सुखी हो गया हूं, मैं ये सोचने की बात है। अब थोड़ा सा मुझे सुख मिल गया है, पहले मैं पैदल चलता था, फिर मैंने साइकिल ले ली तो थोड़ा सा सुखी हो गया, इसके बाद बाइक आ गई तो सुखी हो गया, कार आ गई तो थोड़ा सा और सुखी हो गया कि अब मैं बकायदे धूप में भी जा सकता हूं, बारिश हो रही तब भी मैं कार में जा सकता हूं, तो मैं सुखी हो गया। लेकिन यह सुख जो है ना, खुशी की गारंटी नहीं देता है, बल्कि सच में कभी कभी तो मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि स्थितियां दूसरे तरह की देखने को मिलती हैं, कि आदमी जितना सुखी होता चला जाता है, अंदर से पता लगता है कि दुख उतना ही गहरा होता चला जाता है, उसे लगता है कि समथिंग इज मिसिंग, कि कुछ मिस हो रहा है, कुछ चला गया है, कुछ खालीपन सा अंदर उतर गया है, इस तरह की चीजें अंदर पैदा होने लगती हैं। तो हमें खुशी और सुख, इन दोनों के भी अंतर को बहुत अच्छे तरीके से देखना होगा। इसीलिए हमारे यहां जो बात कही गई है वह आनंद की कही गई है, आनंद की। खुशी की बात उतनी नहीं है जितनी कि आनंद की बात है, क्योंकि आनंद एक आंतरिक अनुभूति है और जो खुशी है वो एक बाहर की चीज है, जो सुख है वो तो बिल्कुल ही बाहर की चीज है। तो दोस्तों, मैंने जानबूझकर के इस विषय पर इतने विस्तार से बात की है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विषय है न केवल आपके अपने जीवन के लिए ही, बल्कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो मेन्स का फोर्थ पेपर है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में आज बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं, रीना लखनऊ से, नांदी रावल अहमदाबाद से, अभिषेक यार्डी राजकोट गुजरात से, और अनीशा शर्मा नई दिल्ली से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। कल रामनवमी की छुट्टी है, आप सबको इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। परसों फिर मुलाकात होगी, तब और बातें करेंगे। अब मुझे इजाजत दें, नमस्कार।